हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कृषा की जिद करने पर युग उसे राणा फैमिली और सिंघानिया फैमिली की दुश्मनी का कारण बताने जा रहा था। भले ही अब राणा फैमिली और सिंघानिया फैमिली के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई हो, लेकिन कृषा को पूरी बात जानने का हक था। युग ने कुछ भी बताने से पहले कृषा को पहले ही वॉर्न कर दिया था कि हरलीन के साथ जो भी हुआ उसके पीछे के कसूरवार उसके माँ बाप थे, और अगर वो उनके खिलाफ कुछ सुन सकती है तभी वो उसे कुछ बताएगा। कृषा के हामी भरने पर युग उसे सब बताने लगा। युग ने कृषा को बताते हुए कहा, ठीक है तो सुनो, ये कहानी आज से पूरे 26 साल पहले शुरू हुई थी। उस वक्त तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। कहते हैं जब जिंदगी की कहानी में सब सही होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि गड़बड़ वहीं से शुरू हो रही है, और ऐसा ही कुछ हरलीन बुआ के साथ हुआ। तुम्हारे दादू के पापा मिस्टर विक्रांत सिंघानिया और मेरे दादू के पापा मिस्टर यशवर्धन राणा भी किसी जमाने में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन माफिया में आने के बाद दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। उन दोनों के बच्चे यानी कि हम दोनों के दादू के बीच दोस्ती थी। एक दूसरे के खिलाफ काम करते हुए भी वो अपने रिश्ते को बैलेंस करके रखते थे, और इसी के चलते उन्होंने अपने अपने बच्चों की सगाई की थी। आदित्य सिंघानिया ने अपने इकलौते बेटे शांतनु सिंघानिया की शादी मेरे बुआ हरलीन के साथ फिक्स की थी, और सब इस शादी से खुश भी थे। प्रॉब्लम की शुरुआत तब हुई जब उनकी सगाई थी। लगभग 26 साल पहले, मुंबई। राणा मेंशन में खुशियों का माहौल था, क्योंकि आज वहां हरलीन और शांतनु की सगाई होने वाली थी। राणा मेंशन तब भी उतना ही बड़ा और भव्य था, बस इंटीरियर और बाकी चीजें पुराने जमाने के हिसाब से थी। सगाई से पहले मिस्टर हर्षवर्धन राणा अपने पिता मिस्टर यशवर्धन राणा के साथ बहस कर रहे थे। वो एक कमरे में थे। यशवर्धन ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर सख्ती से कहा, मेरी बात मान लो हर्ष, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारी इकलौती बेटी है वो, और तुम उसे दुश्मनों के यहाँ भेज रहे हो। कल को कोई माफिया वॉर हुआ तो सबसे पहले आज इस बच्ची पर आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, आप बेवजह टेंशन ले रहे हैं। मैंने और आदित्य ने अपने रिश्ते को काफी बैलेंस करके रखा है, और आगे भी रखेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। अब प्लीज आप ऐसा कुछ मत कहिए जिसे हरलीन को बुरा लगे। वो शांतनु से प्यार करती है, हर्षवर्धन ने जवाब दिया। वो नहीं चाहते थे कि यशवर्धन अब उन दोनों की सगाई में कोई भी ऐसी वैसी बात कहकर उनका मूड खराब करे। यशवर्धन ने आगे कुछ नहीं कहा तो हर्ष वहां से चले गए। उनके जाने के बाद यशवर्धन ने खुद से कहा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, बाकी वक्त तुम्हें असली रंग दिखाई देगा। यशवर्धन इतने गुस्से में थे कि वो सगाई तक में जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने कमरे में बैठकर सिगरेट पी रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सामने हरलीन खड़ी थी। उसे देखते ही उन्होंने जल्दी से अपनी सिगरेट एशट्रे में डाल दी। हरलीन को देखते ही यशवर्धन ने नजरें घुमाकर कहा, मैंने हर्ष को कह दिया है और तुमसे भी यही कहूंगा कि मुझे सगाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, चली जाओ यहां से। लेकिन एक बार ये तो बता दीजिए मैं कैसी लग रही हूं, हरलीन ने जवाब दिया, और वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। उसने पीच कलर की ऑर्गेंजा साड़ी पहनी हुई थी जो उस टाइम काफी ट्रेंड में थी, साथ में लाइट ज्वेलरी और अपने बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा हुआ था। हरलीन उस वक्त 22 साल की थी। हरलीन के कहने पर यश ने उसकी तरफ देखा। उन्होंने हरलीन की तरफ गौर से देखते हुए कहा, ठीक ही लग रही हो। ये कहिए ना, अच्छी लग रही हूँ, लेकिन इस वक्त आप मेरी तारीफ नहीं करना चाहते, हरलीन ने मुस्कुराकर कहा, और फिर यशवर्धन के पास बैठ गई। वो उनका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज दादू मान जाइए ना, सब नीचे सगाई में आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं आओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम चाहती हो मुझे अच्छा महसूस हो तो ये सगाई मत करो, न जाने क्यों मेरा दिल कहता है वो तुम्हें धोखा देगा, यश ने गंभीर आवाज में कहा। उनकी बातें सुनकर हरलीन का चेहरा उतर गया था, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। वो गहरी सांस भरते हुए बोले, ठीक है, मैं सगाई में आने के लिए तैयार हूँ। उनके हाँ कहते ही हरलीन ने खुश होकर उन्हें गले लगा लिया और फिर कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नज़र छाया पर पड़ी जो युग की मॉम थी। उन्हें साथ में शब्द और योग दोनों ही थे जो उस वक्त लगभग 3.5 साल के थे। छाया भी सगाई के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने ब्लैक सिमरी साड़ी पहनी थी और उसे मैच करते हुए युग और शब्द दोनों ने ही ब्लैक सूट पहन रखा था। छाया को देखते ही हरलीन उसके गले लगकर बोली, मैंने उन्हें मना लिया है, मुझे पहले ही पता था वो मान जाएंगे। अगर वो नहीं मानते तो मैं दोनों बच्चों को उनके पास भेजने वाली थी। मैंने इन्हें पूरी स्क्रिप्ट याद करवा दी थी। दादू युग और शब्द से बहुत प्यार करते हैं तो उन्हें कभी मना नहीं करते, छाया ने मुस्कुराकर कहा। हरलीन छाया से अलग हुई और फिर उन दोनों की तरफ देखकर कहा, इनसे सिर्फ दादू ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली प्यार करती है। तो मेरे दोनों जूनियर्स तैयार हो चुके हैं, बोलते हुए हरलीन ने शब्द को गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करने पर युग उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। छाया ने जल्दी से युग को गोद में उठाया और फिर हरलीन से कहा, इतनी कम उम्र में भी ये इतना पोसेसिव है ना, तुम इसे जानते हुए भी पहले शब्द को कैसे गोद में ले सकती हो। हरलीन ने कुछ नहीं कहा, बस वो जवाब में मुस्कुरा दी। इसके बाद वो दोनों नीचे चली गईं। कुछ ही देर में सगाई की पार्टी शुरू होने वाली थी। आदित्य सिंघानिया और शांतनु वहां पहुंच चुके थे। उस वक्त भी अमृता उनके लिए काम किया करती थी। वो आदित्य सिंघानिया की असिस्टेंट थी और उम्र में लगभग 24 साल के करीब थी। सगाई की पार्टी में सब एक दूसरे से मिल रहे थे, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और माफिया के लोग आए हुए थे। इन सब के बीच वहां एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जो वहां इन्वाइटेड भी नहीं था। वो लगभग 5 फुट 4 इंच के करीब की थी। गोरा रंग, हल्की ग्रे आइज और कंधे से कुछ लंबे काले बाल। ऐसा लगता था जैसे वक्त के पन्ने बदल गए हों और कृषा वक्त में पीछे पहुंच गई हो। वो कृतिका थी, कृतिका चौधरी, जो दिखने में काफी हद तक कृषा जैसी लगती थी। मुझे आज यहां नहीं आना चाहिए था, कृतिका ने घबराई आवाज में कहा और अमृता की तरफ देखा। तुम घबराओ मत, मैं उनसे बात कर लूंगी, वो तुम्हें काम दे देंगे, अमृता ने जवाब दिया। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा जो उस वक्त 7 साल के करीब था और उसने कृतिका का हाथ पकड़ रखा था। युग जिस बर्बादी की बात कर रहा था वो उसी दिन शुरू हुई थी। हरलीन की सगाई तक सब सही जा रहा था, लेकिन कृतिका चौधरी का वहां आना हरलीन की बर्बादी की शुरुआत थी।